नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक स्थिर साझेदार चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वे साझा किया जाएगा और प्रौद्योगिकी से मानवता को तभी सच्चा लाभ मिलेगा जब उस पर भरोसा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इस सफल यात्रा ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों ने के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूह से बातचीत करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD Vance ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वांस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप के में मेक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।